नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकैलिटी हासिल कर ली है। इसके साथ ही भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की है। कल रात सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा यात्रा में एक निर्णायक कदम उठा रहा है, जो देश के तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाता है। रिएक्टर के तकनीकी महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उन्नत रिएक्टर, जो खपत से अधिक ईंधन उत्पादन करने में सक्षम है, देश की वैज्ञानिक क्षमता और इंजीनियरिंग कौशल की मजबूती को दर्शाता है। तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्थित 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। ये भारत की दीर्घकालिक परमाणु रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। असम की 126 सीट, केरलम की 140 सीट और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए मतदान गुरुवार को एक ही चरण में होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि असम के हर जिले और क्षेत्र का विकास उनकी पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। असम के होजाई में एक रैली में श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में असम विकास से वंचित रहा और पार्टी ने अपने हितों के लिए काम किया।
कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी दूरगामी सोच के साथ विकास के काम नहीं करती। वहीं बीजेपी एक लंबे विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। हम विकसित असम से विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और इसलिए हमने बीते 10 साल में पूरी मेहनत से काम किया है।
एक जनसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार घुसपैठियों को हटाने में नाकाम रही है। इस बीच तमिलनाडु में एक चरण के मतदान और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। उम्मीदवार गुरुवार तक नाम वापस ले सकते हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया। राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय ने अलग अलग जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्ताव पर विधिवत विचार और सभी संबंधित पहलुओं के निष्पक्ष आकलन के बाद राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। ये पहली बार है जब विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव रखा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत की कर प्रणाली सरलीकरण, प्रौद्योगिकी, विश्वास और पारदर्शिता की दिशा में विकसित हुई है, जिससे राजकोषीय क्षमता मजबूत हो रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश की राजस्व प्रणाली में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। तमिलनाडु के वर्ष 2020 के चर्चित साथनकुलम हिरासत में हुई मौत के मामले में मदुरई की प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने दोषी 9 पुलिसकर्मियों को मृत्यु दंड सुनाया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने 24 जून 2020 को इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और 29 जून को जांच सीबीआई को सौंप दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वो रात तक समझौते पर सहमत नहीं हुआ तो 4 घंटे के अंदर ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने बिजली संयंत्रों और पुलों पर हमले की बात कही और संभावित युद्ध अपराधों के आरोपों को भी खारिज कर दिया। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ संघर्ष में सहयोग न करने पर प्रशांत क्षेत्र के सहयोगी देशों की आलोचना की। साथ ही उन्होंने नाटो सहयोगी देशों के उस रुख पर भी नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने हॉर्मूज जल डमरू मध्य को फिर खोलने की कार्रवाई में शामिल होने से इनकार किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।